सीटों को कस लीजिए क्योंकि इंतजार की घड़ी खत्म हुई एंड द शो इज अबाउट टू बिगिन
पे सुनिए या फिर रेडियो संगम की ऐप डाउनलोड कीजिए 01484-817705 पे फोन घुमाइए या फिर 07444-202155 पे टेक्स्ट कीजिए हडर्सफील्ड की जान और आपका अपना रेडियो संगम
Once again to the Monday night special hour special show with one and only Mubasit Shahid. तो चलिए हम आगाज करते हैं उस कहानी का जिसे हमने जुमेरात की रात को अधूरा छोड़ दिया था तो देर किस बात की तो जिस कहानी का मैंने जिक्र किया था वो बहुत ही अद्भुत है बहुत से पहलू हैं उस कहानी के बहुत सारी ऐसी अनकही बातें हैं जो उस कहानी को समझने के लिए दरकार हैं ये कहानी महज सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हकीकत में मबनी उन किस्सों का मजमुआ है जो मैं आपके सामने रखूंगा जो मैं आपको बताऊंगा आपको सुनाऊंगा और हम साथ में मिलकर उस कहानी के कुछ असबाक पर नजरसानी करेंगे और देखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं और किन चीजों से हम बच सकते हैं सो इंतजार किस बात का थर्सडे नाइट जिस कहानी का मैंने आगाज किया था वो थी कहानी एक मॉन्स्टर के बारे में जी हां जो हमारे बीच में ही रहा जिसकी कहानी शायद हम सभी जानते हैं पहचानते हैं उससे शायद हमारी वाकफियत भी इस लिहाज से है क्योंकि वो मॉन्स्टर कुछ ऐसा नहीं जो जिसकी शक्ल को देखकर आप चीख उठे वो मॉन्स्टर कुछ ऐसा नहीं जिसको आप सोचें तो आपको उदासी होने लगे बल्कि मैं यूं कहूंगा कि वो मॉन्स्टर ऐसा दिमागी तौर पर कि जब आप उसके किस्से सुने जो हरकत उसने अपनी जिंदगी में सर अंजाम दी उन तमाम वाकयात को परखें तो शायद आपकी रूह तक लर्ज जाए जी हां आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैन हु लिव्ड अमंग अस हु लिव्ड इन मिलवाकी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु बोर्न इन May 1960. And his name was... His name was Jeffrey Dahmer. बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जेफरी डामर के नाम पे बनी हैं, बहुत सारे ग्राफिक नॉवेल्स लिखे गए हैं, बहुत सारी फीचरेट फिल्म भी मंजरे आम पे आई, और एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड टीवी सीरीज जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, यानी नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, अ मॉन्स्टर द जेफरी डामर स्टोरीज के नाम से, आप वो सब देख सकते हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो आप उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं, वक्त की कमी है, तो मुबासित शाहिद हाजिर है वो तमाम तर चीजें नरेट करने के लिए, आपको सुनाने के लिए। लेकिन क्या चीज दरकार है मुबासित को? आपकी तवज्जो। जी हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो डरिए नहीं, शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, टेक्स्ट पे बस बताइए दैट यू आर लिसनिंग माय शो द अक्टूबर स्पेशल, द हेलोवीन स्पेशल, जेफरी डामर स्टोरीज पार्ट टू। तो जिन लोगों ने मेरी पार्ट वन को नहीं सुना या समझा या टाइम नहीं मिला, यार मुझे पता है बहुत बिजी लोग हैं आप, तो उनके लिए मैं ये बता दूं, थोड़ा सा रीकैप दे दूं कि हमने पार्ट वन में क्या बात की थी। तो हमने जो बात की थी वो कुछ यूं है कि जेफरी डामर की पैदाइश कब हुई, किस किन हालात में हुई, कैसे हुई, फिर 4 साल की उम्र में एक हर्निये के ऑपरेशन के बाद उसके करेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आनी शुरू हो गई, और जब वो उस ट्रॉमा से अभी बाहर आ रहा था तो किस चीज में उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया, और उस इंटरेस्ट के डेवलप होने में उसके वालिद का यानी उसके फादर का कितना ज्यादा हाथ था। जो लोग अपना सर खुजा रहे हैं या अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि वो ऐसी क्या चीज थी जो उसका इंटरेस्ट डेवलप कर गई, और तो याद रखिए दोस्तों, इंसानी दिमाग कब किस हालात में किसी चीज को पसंद या नापसंद करता है, कोई भी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या कोई भी इंसान जो हुनर और इल्म रखता हो, तब भी वो इस बात को बिल्कुल मुंजमिंद तरीके से नहीं बता सकता। एक शोरटी के साथ, एक यकीन दिहानी के साथ कभी भी आपके सामने ये चीज बयान नहीं कर सकता कि इंसानी दिमाग अपने फुल पोटेंशियल पर क्या क्या काम सर अंजाम दे सकता है और क्या क्या काम करता है। तो यहां भी कुछ जेफ के साथ कुछ यूं ही हुआ। जूं जूं वो बढ़ता चला गया अपनी उम्र में, जब वो हाई स्कूल में जा पहुंचा तो उसका वो ही शौक क्या था, रोड रेज में मरे हुए एनिमल्स को डाइसेक्ट करना, लोबोटमी करना, उनकी सर्जरी करना, उनके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ खेलना, महसूस करना या फिर उस पर रिसर्च करना, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जेफ का ये शौक भरता चला गया और उसी दौरान जेफ की दिमागी हालत भी कमजोर से कमजोर होती चली गई। क्यों? क्योंकि उसके मां बाप का डाइवोर्स हो गया, वो दोनों अलग हो गए और दोनों ने जेफरी डामर को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, दोनों ने उसकी कस्टडी नहीं ली, दोनों ने जेफ की जिम्मेदारी नहीं उठाई। जबकि उसके फादर काफी ज्यादा एफिलिएट थे यानी मोहब्बत करते थे अपने बेटे से, पर फिर भी मजबूरी के तहत उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं उठाई। जेफ अकेला रहना शुरू हो गया और उसी दौरान न जाने दिमाग में ऐसी क्या चीज बुन रही थी जेफ के कोई नहीं जानता और आज तक शायद कोई जान भी ना पाए। इसी दौरान 17 साल की उम्र में जेफ ने एक हिच हाइकर को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी, यानी उसे मार दिया। तो ये तो था पार्ट वन मेरे दोस्त। यहां तक मैंने बहुत, जैसे कहते हैं, बड़े आराम से और जैसे क्रीम सी उठाकर थोड़ा सा मरकजी ख्याल तैयार कर आपके सामने पेश कर दिया। आपका मन करे तो प्लीज डू लिसन अगेन द थर्सडे नाइट शो। अभी पिछले हफ्ते किया यार मैंने। खैर, सो नाउ इट्स द टाइम फॉर द पार्ट टू। जेफ ने जब पहला मर्डर किया 17 साल की उम्र में, तो वो घबरा गया कि शायद उसे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बल्कि जब जेफ को कुछ समझ नहीं आया तो उसने उस हिच हाइकर के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को काट डाला। कूड़ेदान के बैग में लपेटा, बंद किया, 3-4 बैग्स बनाए और लेकर रवाना हो गया ताकि उसको डंप कर सके। इसी दौरान पुलिस ने उसको देखा, रोका, पूछा कहां जाते हो तुम, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तमाम तहकीक कर ली और साथ ही ये भी बोल दिया कि बहुत अजीब सी हमक सी आ रही है तुम्हारी गाड़ी से, इसमें सब क्या है। तो जेफ ने आगे जवाबन हाजिर दिमागी का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मेरे माँ बाप का डाइवोर्स हो चुका है तो मैं सो नहीं पा रहा था, तो सोचा क्यों ना घर के काम कर लूं, घास फूस काट लूं और जो कूड़ा करकट कटा हुआ है उसको बैग्स में बंद करके डंप कराऊं। उस टाइम ऑफिसर्स ने तहकीक किए बिना उसको घर जाने दिया। तब जेफ सिर्फ 17 साल का था, ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, कीप इन माइंड। जेफ के जमीर जो था उसको बार बार मलामत कर रहा था, बार बार उसको झंझोर रहा था कि तुमने ये एक गलत किस्म का कदम उठाया है, इस कदम में जमीर साथ नहीं दे रहा था, झंझोर रहा था। शायद हम सभी के जमीर झंझोरते हैं वो पहली बार जब हम कुछ गलत करने वाले होते हैं। जेफ ने उस टाइम बहुत सोचा, समझा और एक नतीजे पर पहुंचा कि ये वाकई उससे एक गलत एक्ट हो गया, गलत कदम उठ गया और वो आइंदा इस चीज से इज्तनाब करेगा, यानी दूर रहेगा, ऐसी हरकत में खुद को मुलविस नहीं करेगा, ना ही उस हद को पार करेगा जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और जेफ ने तकरीबन 9 साल तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अब इन 9 सालों के अंदर जो हमें सोचने और समझने की बात है, इन 9 सालों के अंदर जेफ ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। तो फिर अगर हम सिर्फ ये सोचें कि इस शख्स ने तो 17 खून कर दिए, 17 लोगों की जान ले ली, इंसानियत को नुकसान पहुंचाया और ऐसा नुकसान पहुंचाया कि ना सिर्फ जो लोग इस दुनिया से रुखसत कर दिए गए उनके फैमिली मेंबर्स पशेमा اور افسردہ تھے بلکہ پوری انسانیت افسردگی کا اظہار کر رہی تھی کیونکہ یہ سب نارمل نہیں ہے میرے دوست لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسی کہانی ایسے قصے ایسے لوگ ہم میں موجود ہوتے ہوئے بھی ہمیں معلوم ہونے نہیں دیتے ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم بات کر رہے ہیں اس نو سال کے وقفے میں نو سال میں جیف نے کیا 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 جب ہائی سکول پاس کرنے کی باری آئی تو جیف کا جو جی پی اے تھا وہ 2 out of 5 تھا اس کے اپنے کلاس میٹس نے اس کو ڈس آن کر دیا اسے کہا کہ ہم اس جسے ہم اکثر اگر پاکستانی زبان میں کہیں تو نالائک لوگوں کو یا نالائک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہم اپنی عزت میں کمی سمجھتے ہیں ہم ان لوگوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں جو شاید پڑھائی میں اتنے تیز نہیں ہیں ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کی سوچ کو معیوب سمجھتے ہیں جو علم حاصل کرنے میں تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں تو کیا غلطی اس شخص کی ہے جو علم سے محروم ہو رہا ہے یا اس انسان کی جو دوسرے شخص کو جو علم سے استفادہ نہیں کر پا رہا اسے حاصل نہیں کر پا رہا اسے دوری اختیار کر لینا اسے اپنے آپ سے دور کرنا اسے نیچ سمجھنا یا اس کو غلط سمجھنا کس کی غلطی ہے یہاں پہ اس شخص کی یا ان انسانوں کی جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پڑھنے والا صرف اچھا کمانے والا اور صرف اچھا پہننے والے کی ہی عزت کرنا فرض ہے باقی کوئی بھی ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں جواب خود سے لیجئے گا تو جب 2 GPA کے ساتھ کوئی بھی دوست یار اس کے کلاس میٹس اسے اپنے پاس نہیں کھڑے ہونے دیتے تو جیف نے ایک بار جب تمام جو گریجویٹس تھے ان کی پکچرز کھچ رہی تھی فوٹوگرافی ہو رہی تھی تو جیف بڑی خاموشی سے چپکے سے آ کے اس گروپ فوٹو کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا اور کسی کو پتا نہیں چلا وہ پکچر کھینچ لی گئی اس سال میں جو گریجویٹس کی بک تیار ہوئی اس بک میں جیف کی تصویر تھی جب کلاس میٹس نے دیکھا کہ یہ تصویر ہم ہائیلی کوالیفائیڈ جنہوں نے اتنی خوبصورت انداز میں مارکس لیے ہیں ٹاپ کیا ہے ان کے ساتھ یہ بچہ کیوں کھڑا ہے جیف کیوں کھڑا ہے تو ایک پٹیشن کے زور پر جیف کی تصویر کو ہٹوا دیا گیا جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں پھر خود سے پوچھئے سوال کیجئے کہ جب آپ کا دماغ اس طرح کے حالات سے دو چار ہو والدین سر پہ ہوں ہی نہیں وہ آپ کو پوچھے ہی نہیں آپ پڑھائی میں کیا کر رہے ہیں کوئی بھی نظر آپ پہ رکھے ہی نہیں جو آپ کے اس جماعت میں دوست یار ہوں باقی طالب علم ہوں وہ آپ سے دوستی بھی نہ رکھیں اور بلکہ ظلم یہ کریں کہ اگر آپ کے مارکس کم بھی آئے ہیں تب آپ کو بالکل ہی الگ کر دیں تو سوچئے کہ دماغ پر کیا بیتے گی یہ تھی پہلا وار زور کا جو کہ جیف کے دماغ پر سناٹے دار پڑا اس کا پڑھائی سے دل اٹھنا لگ گیا اسی دوران جیف جوانی میں قدم رکھ رہا تھا तो जो जो जवान हो रहा था उसकी तरगीबात में भी बहुत सारी चीजें शमूलियत इख्तियार कर रही थी। जेफ को क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, उसे किस चीज में दिलचस्पी हो रही थी, वो तमाम तर चीजें बदलना शुरू हो रही थी, जो अक्सर होता है जब आप नौ उम्री में से गुजरते हैं, यानी टीन एज में से गुजरते हैं, 17, 18, 19 years old के होते हैं, 20s में आपने कदम रखने वाला होता है, तो बहुत सारे जज्बात एहसासात बदलते हैं, वक्त भी बदल जाता है, बदलने लग जाता है। शायद उससे पहले आप किसी और चीज में दिलचस्पी रखते हो, लेकिन वो उम्र से गुजरने के बाद आपकी दिलचस्पी का हसार शायद ब्रॉडन अप हो जाए, बहुत ज्यादा वसी हो जाए, या शायद तंग हो जाए। जेफ के साथ भी कुछ यूं ही हुआ, उसे किसी चीज में भी दिलचस्पी नहीं रही सवाए दोस्ती करने के, यानी दोस्त बनाने के। वो हर मुमकिन कोशिश करता रहा कि उसका कोई दोस्त बने, साथी बने, हामी बने, लेकिन किसी ने भी कभी उससे दोस्ती करनी नहीं चाहिए। खुद के वालदैन भी उससे अपना दोस्त नहीं रखते थे। जेफ के वालिद ने यह सोचा कि शायद मजीद बेहतरी के लिए जेफ का कॉलेज जाना ज्यादा जरूरी है, मकसूद है, और वहां जाएगा तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कॉलेज से जो उसको साइंस में दिलचस्पी है, यानी सर्जिकल साइंस अगर मैं यूं कहूं, उसे डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, कुछ भी इस तरह की चीज को समझना है, उसके लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उसके वालिद ने ओहायो स्टेट में जो कॉलेज था उसमें उसको दाखिला करवा दिया। दाखिल हुआ, जेफ ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि दिलचस्पी, इंटरेस्ट वो ही खत्म हो गया था, जैसे नापैद ही हो गया हो। और जेफ का जो जीपीए आया पहले साल का, वो था 0.45। इतने लो स्कोर के बाद उस कॉलेज के डीन ने भी एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग की, उसके वालिद से बात की, उसको बताया कि आपका बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ना ही पढ़ सकता है, उसे कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया मौका दिए बगैर, ये कहे बगैर कि एक और मौका देके देखते हैं, शायद उसकी दिलचस्पी खींच ली जाए वापस, शायद उसे एजुकेशन में वापस ले आया जाए। लेकिन नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस में ही जेफ को कॉलेज से जाना पड़ा। वालिद साहब ने जब ये चीज देखी उसके, तो बहुत परेशान हुए और सीधे सीधे कह डाला उसके चेहरे पर जो ही कॉलेज से बाहर आए कि अब से तुम आर्मी ज्वाइन करोगे और मैं आगे से कोई बात नहीं सुनना चाहता। जेफ सिर्फ देखता ही रह गया अपने वालिद को और हां में हां मिला दी कि ठीक है, अगर मेरे वालिद की यही ख्वाहिश है तो मैं आर्मी में जाऊंगा। और वो आर्मी में चला भी गया, आर्मी की एक साल की ट्रेनिंग कंप्लीट की और वो मेडिकल ऑफिसर बन गया एक ईयर की ट्रेनिंग के बाद। जब ट्रेनिंग कर वो वापस लौटा तो क्रिसमस का टाइम था। क्रिसमस के टाइम जब घर आया तो वालिद साहब ने उसको जब देखा तो अपनी उसकी जो न्यू वाइफ थी उससे भी मिलवाया, जो जेफ की स्टेप मॉम थी, और बहुत तारीफ की जेफ की कि एक बहुत अच्छा बच्चा है, हमेशा मेरी बात मानता है और आज देखो किस मुकाम पे पहुंच गया है, आर्मी के अंदर एक मेडिकल ऑफिसर। वाओ, दैट्स अमेजिंग, एब्सोल्यूटली अमेजिंग। जेफ ने आफ्टर सपर बताया कि उसकी पोस्टिंग जो है अगले हफ्ते कहीं कर दी जाएगी और वो कुछ ऑफिसर्स के साथ उस जगह मुंतकिल हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने जैसे आपको ये अर्ज किया था कि जूं जूं आप नौ उम्री से बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी, जिस चीज में आपकी इंटरेस्ट होता है, कहां पर आपका इंटरेस्ट ज्यादा चला जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, और कहीं पर आपका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। तो जेफ के साथ जब ये चीजें हो रही थी तो जेफ ने एक ऐसा अमल शुरू कर दिया था अपनी टीनेज में, जिसका जिक्र मैंने पार्ट वन में भी किया। वो आदत आर्मी में जाने के बावजूद भी उससे नहीं छूट रही थी, और वो आदत थी खुद को टॉक्सिकेटेड रखने की। तो वो किसी मोजी मंशियात का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करता था कि शायद मैं आपको बयान ना कर पाऊं, लेकिन समझने के लिए इशारा ही काफी है। हम अपने तस्कीन दिल के लिए जब हमें प्यास लगती है, प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं। जेफ पानी का इस्तेमाल नहीं करता था, वो एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करता था जिससे उसका दिमाग माउफ हो जाता था, और उसकी आदत में इतनी पुख्तगी आ चुकी थी कि उससे अलग रहना वबाले जा बन चुका था। तो जब जेफ दोबारा आर्मी में लौटा और उसकी मुंतकली में अभी एक डेढ़ हफ्ता था, तो वहीं पर उसकी उस आदत ने जोर पकड़ा। और आपको पता है कि आर्मी के अंदर डिसिप्लिन को कितना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। हर लिहाज से डिसिप्लिन को मेंटेन करना कितना जरूरी समझा जाता है। वहां पर यानी आर्मी के अंदर तो कोई चांस ही नहीं है कि आप कोई गलती का इर्तकाब कर सकें, क्योंकि शायद जब आर्मी से आपको निकाल दिया जाता है तो सीधा कोर्ट मार्शल करते हैं। शायद जेफ के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। उसकी वो आदत जो पुख्तगी की तरफ बढ़ चुकी थी और बहुत ज्यादा पुख्ता हो रही थी, रुसवा करवा दिया, और आर्मी वालों ने उसे जाने दिया, निकाल दिया। और जेफ जब दोबारा लौटा तो उसके वालिद का मूड कुछ खासा ठीक नहीं था। उसके वालिद ने सोचा कि अब एक आखिरी हल है कि जेफ को उसकी दादी के पास स्टे करवाया जाए। दादी उमर रसीदा हैं, उमर के इस हिस्से में हैं और अकेली हैं, तो चलो जब जेफ उनके साथ रहेगा तो बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखेगा, हाथ बताएगा, और काफी चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा उसकी जिंदगी के अंदर, और कुछ होना भी ऐसा ही हो गया, शुरू हो गया ऐसा होना कि जेफ अपनी दादी के साथ रहता, उनका हाथ बिटाता घर के कामों में, लॉन की सफाई करना, घास काटना, घर की सफाई करना, लॉन्ड्री करना, कपड़े धोना, बर्तन, ये सब में वो हाथ बटाना शुरू हो गया। और साथ ही में जेफ को एक शॉप में जॉब भी मिल गई, जहां वो हर सुबह 9-10 बजे जाता और शाम को 4-5 बजे वापस आ जाता। वो एक लोकल शॉप थी, एक लोकल मीट शॉप थी जहां पे जेफ काम करता और रोजी कमाता। दादी उसकी एक स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन थी। एवरी संडे मॉर्निंग जेफ को अपने साथ चर्च लेके जाती थी। जेफ वहां जाता, टाइम बिताता, फादर यानी जो चर्च में फादर होते हैं उनकी बात सुनता, बाइबल पढ़ता और अपनी दादी के साथ ही घर लौट आता। पर जेफ को तस्कीने दिल फिर भी मैसर नहीं जेफरी डामा अपनी दिमाग की तमाम तर सोचों पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो आदत पुख्तगी की तरफ भर जाती है वो वापस खत्म की जाए या इंसान वो वापस लौट आए खासा मुश्किल हो जाता है तो एक बार इसी दौरान जो 9 साल का वक्फा मैंने खींचा जो आज का पार्ट टू का हासले वसूल है जिसमें शायद आपको ये बताना मकसूद है कि जेफ के दिमाग पर कब कब कहां कहां और कैसे कैसे वार किए गए जेफरी डामा एक बार एक स्टोर में गया वहां से कुछ अपने लिए शॉपिंग की कुछ शर्ट्स खरीदी और जो ही काउंटर की तरफ आया बिल पे ऑफ करने तो उसकी नजर एक मैनिक्विन पे गई हेडलेस मैनिक्विन यानी सिर्फ एक स्टैचू एक पुतला खड़ा है और वो भी एक मैन का मैनिक्विन और जो शॉप के अंदर सेल्स पर्सन है वो उस मैनिक्विन के ऊपर से कपड़े चेंज कर रहे हैं जेफ ने जब उनकी तरफ देखा तो उसकी नजर मैनिक्विन पे ही जमी रही उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा था जेफ ने किसी तरीके से अपने आप को उसी स्टोर के अंदर छुपा लिया और जब तमाम स्टोर वाले चले गए तो जेफरी डामर ने उस मैनिक्विन को चुरा लिया जी हां वो मैनिक्विन चुरा कर अपने घर ले आया अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मैनिक्विन उसको किस तरह चुरा कर लाया और वो भी स्टोर के अंदर किसी ने पकड़ा नहीं तो जेफ की किस्मत जैसे मैंने कहा बहुत साथ देती थी उसके जेफरी डामर ने उस मैनिक्विन के छोटे छोटे टुकड़े किए क्योंकि वो ओपन एंड क्लोज करने वाले उसके नट बोल्ट्स थे उसको डिसेंबल किया और घर लाकर वापस असेंबल कर दिया जेफ ने वो मैनिक्विन अपने कमरे में रख लिया एक इंटरव्यू में जेफ ने बताया कि जब वो मैनिक्विन अपने कमरे में लेकर आया तब उसे कई सालों बाद ये एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है अब एक पल के लिए जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के दिमाग को सोचिए कि जो कि अपनी दादी के साथ रह रहा है और दादी आई गेस ये ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा शफकत करने वाले प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले होते हैं वो भी बेलॉस और कोई इंसान अगर उनके साथ रह के भी अकेला है तो उसकी दिमागी हालत कितनी कमजोर होगी जरा सोचिए अगली सुबह जेफरी डामा रूटीन के मुताबिक तैयार हुआ और काम पे चलने लगा और जूं ही जब काम पे जा रहा था तो उसने अपनी दादी को कहा कि प्लीज आप मेरे कमरे में मत जाइएगा मेरा कमरा बहुत फैला हुआ है और ये जो बेडशीट्स हैं ये आप मेरे कमरे के बाहर ही रख दीजिएगा मैं अपना कमरा खुद ठीक करना बेहतर समझता हूं और ये कहकर जेफ अपने काम पे चला गया दूसरी तरफ दादी ने भी दादी को भी चैन नहीं आया ना सुकून नहीं सी की कर दी दादी ने उस कमरे को खोल दिया और जो ही जब वो उस कमरे के अंदर गई तो उस कमरे में कोई रोशनी नहीं थी क्योंकि जेफ ने तमाम पर्दे आगे रखे थे दादी की नजर बेड पे पड़े उस पुतले पे पड़ी जो कि जेफ चुरा कर लाया था दादी के रोंगटे खड़े हो गए दादी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे तो वो इंतजार में बैठ गई कि जेफ जब अपने काम से लौटेगा वापस आएगा तब मैं उससे पूछूंगी कि ये क्या माजरा है और यूं ही हुआ जेफ वापस आया और आते साथ ही हाय हेलो बोलकर सीधा अपने कमरे में चला गया और जूं ही कमरे में गया तो वहां मैनिक्विन नहीं था मैं दोबारा आपको यकीन दिला दूं और बता दूं वो मैनिक्विन एक आदमी का था हेडलेस मैनिक्विन जेफ समझ चुका था कि दादी कमरे में आई हैं वो नीचे उतरा दादी के पास आया और दादी से पूछा कि जो चीज मेरी कमरे में थी वो कहां है दादी ने कहा किस चीज के बारे में बात कर रहे हो जेफ ने कहा जो कि अब मौजूद नहीं है मेरे कमरे में वो चीज जबकि मैंने आपको बोला था मेरे कमरे में नहीं जाना जेफ की आवाज में ऊंचाई और शिद्दत आनी शुरू हो गई जेफ अपनी दादी पर चिल्लाने लगा उसे मालूम नहीं हुआ कि कब उसकी टोन बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने वाली हो गई और दादी सहम गई और यहां पर गौरतलब बात यह है कि हम सब बच्चों को सिखाया जाता है बताया जाता है पढ़ाया जाता है कि जो आपसे बड़े हों उम्र में भी तजुर्बे में भी उनकी रिस्पेक्ट करना उनका एहतराम करना उनका अदब करना कितना जरूरी है तो आप आवाज तो बुलंद करने का सोच भी नहीं सकते लेकिन जेफ को कुछ समझ नहीं आया और वो चीखता रहा चिल्लाता रहा और उसने अपनी दादी का एक फेवरेट बाउल था वो भी जमीन पे दे मारा और तोड़ दिया और घर से चला गया That's the end of the part two मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा आपको जो पार्ट थ्री है वो फिनाले है एंड आई डू बिलीव कि आप वो भी सुनेंगे और मुझे अपनी राय से आगाह करेंगे